अरुणिमा इस वक्त कमरे में थी और आईने के सामने खड़ी थी। नीचे हॉल में रास्ते के मेहमान आ चुके थे। अरुणिमा को नहीं पता था कि ये लोग कौन हैं, लेकिन अगर ये घर पर आए हैं तो इसका मतलब ज़रूर ये इम्पॉर्टेंट गेस्ट हैं, तभी तो ये घर तक आए हैं। और इस शहर में तो आज तक किसी को जानता भी नहीं है, लेकिन यहाँ उसके मेहमानों का होना इस बात का सबूत है कि वो मेहमान बहुत ख़ास हैं। आस्तिक इस वक्त मेहमानों के साथ बैठा हुआ था और अरुणिमा कमरे में तैयार हो रही थी। उसने खुद को उस खूबसूरत गाउन में देखा जो इस वक्त उसने पहना हुआ था। उसी के साथ उसने अपने चेहरे को भी देखा। गाउन भले ही कितना खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन वो अरुणिमा के चेहरे की उदासी को छुपा नहीं पा रहा था। अरुणिमा ने किस्मी को बता दिया था कि उसे खाने में क्या क्या बनाना है और किस्मी मेहमानों के खाने की तैयारी कर रही थी। अरुणिमा कमरे में खुद को देख रही थी। उसने धीरे से मेकअप का बॉक्स उठाया और मेकअप की एक परत अपने चेहरे पर लगा ली ताकि वो दिखने में थोड़ी सी खूबसूरत लग सके। पर जैसे ही उसने अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर लिपस्टिक को वापस ड्रेसिंग टेबल पर रखा, वैसे ही आस्तिक उसके पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अरुणिमा एक पल के लिए ठिठक जाती है। वो घबरा कर अपना चेहरा उठाकर आईने में देखती है जहाँ आस्तिक का अक्स उसके पीछे नजर आ रहा था। हाय, कुछ भी कहो लेकिन इस कमीने पर ब्लैक कलर अट्रैक्टिव लगता है, बिल्कुल ब्लैक टेबल की तरह, उसके मन में ख्याल आया। मेहमान आ चुके हैं और अब वो मेरी बीवी से मिलना चाहते हैं। ये कहते हुए आस्तिक धीरे से अरुणिमा के कानों के पास आया और उसके कानों के पास लटक रही लटों को अपने होठों से छूते हुए उसके कानों में गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, आस्तिक रायचंद की बीवी से मिलना है उन्हें। ये कहने के बाद आस्तिक ने शीशे में अरुणिमा का अक्स देखा। अरुणिमा ने भी देखा। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी झूठी मुस्कान थी। वो समझ गई कि आस्तिक क्या कहना चाहता है। हमेशा की तरह उसकी इज्जत, रेप्यूटेशन और नाम पहले। अरुणिमा ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। आस्तिक अरुणिमा से थोड़ा दूर हटा, फिर उसके कंधों को पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और एक सरसरी नज़र से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। आस्तिक की निगाहों को महसूस करके अरुणिमा के शरीर में सिहरन दौड़ गई, पर तभी आस्तिक ने अपना एक हाथ उसकी कमर पर डाला और उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। अरुणिमा कुछ समझ पाती उससे पहले ही आस्तिक ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और बेरहमी से उसे किस करने लगा। अरुणिमा सांस के लिए तड़प रही थी, लेकिन वो जानती थी कि संघर्ष करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए उसने अपने हाथ आस्तिक के कंधे पर रखे और बस इस किस के ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। एक जोरदार दम घोटो किस के बाद आखिरकार आस्तिक उसके होंठों से अलग हुआ। तेज़ी से सांस लेते हुए उसने अरुणिमा को देखा। अरुणिमा की सांस भी बेकाबू हो चुकी थी। वो बड़ी बड़ी आंखों से आस्तिक को देख रही थी। आस्तिक के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। अभी 10 मिनट पहले जो लिपस्टिक अरुणिमा ने लगाई थी, अब वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। आस्तिक के होठों के साथ साथ उसके चारों ओर लाल निशान फैले हुए थे। उसने अरुणिमा की कमर से अपनी पकड़ हटा दी। लड़खड़ाते हुए अरुणिमा खुद को गिरने से बचाती है और आस्तिक को देखने लगती है। आस्तिक ने एक टिश्यू उठाया और अपने होठों को पोंछकर उसे स्टाइल से फेंका, जो सीधा डस्टबिन में जाकर गिरा। अरुणिमा अभी भी आस्तिक को देख रही थी। उसके होठों की लिपस्टिक पूरी तरह मिट चुकी थी। आस्तिक उसकी ओर बढ़ा तो अरुणिमा ने घबराकर कदम पीछे लिए, पर वो ड्रेसिंग टेबल से टकरा गई। अब पीछे जाने की कोई जगह नहीं थी। उसकी आंखों में डर था, कहीं आस्तिक फिर से उसे टॉर्चर ना करने लगे। लेकिन आस्तिक ने ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई एक न्यूड कलर की लिपस्टिक उठाई और धीरे से उसे अरुणिमा के होंठों पर लगाने लगा। अरुणिमा एकदम से ब्लैंक हो गई। आस्तिक की ब्राउन आइज उसके होंठों पर टिकी हुई थी। वो धीरे धीरे लिपस्टिक लगाता रहा और फिर अपनी छोटी उंगली से उसे पूरे होंठों पर फैलाया। फिर उसने उसकी आंखों में झांक कर हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब लग रही हो आस्तिक रायचंद की बीवी। अरुणिमा एकदम से हैरान हो गई। क्या पागल इंसान है, सीधे सीधे कह नहीं सकता था कि मेरे लिपस्टिक का कलर अच्छा नहीं है, दूसरी लगा लो। इसके लिए इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी। उसके होंठों पर लिपस्टिक लगाने के बाद आस्तिक ने अपनी उंगलियों से उसके बालों की कुछ लटे कान के पीछे की और एक बार फिर से देखने के बाद मुस्कुराते हुए बोला, परफेक्ट। आस्तिक और अरुणिमा कमरे से बाहर आए। आस्तिक ने अरुणिमा की कमर में हाथ रखा हुआ था और कमरे से बाहर निकलते ही अरुणिमा ने अपने चेहरे पर वो नकली मुस्कान ओढ़ ली। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अरुणिमा ने देखा कि हॉल में 3 लोग बैठे हुए हैं। एक आदमी जिसकी उम्र 55 से 60 के आसपास थी और एक औरत जो उसकी उम्र के करीब ही लग रही थी, शायद ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। वहीं सोफे की दूसरी तरफ एक शख्स बैठा हुआ था जिसकी पीठ अरुणिमा की ओर थी। वो नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन पीछे से देखने पर ऐसा लग रहा था कि कोई जवान आदमी है। आस्तिक अरुणिमा को लेकर मेहमानों के पास आया और जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, सबकी नज़रें अरुणिमा पर टिक गईं। अब जाकर अरुणिमा ने गौर किया कि ये एक बुजुर्ग दंपत्ति थे और उनके साथ शायद उनका बेटा था। उस लड़की की शक्ल बहुत हद तक उस बुजुर्ग आदमी से मिलती जुलती थी। आस्तिक ने मुस्कुराते हुए अरुणिमा का इंट्रोडक्शन करवाया और कहा, मिस्टर राय, मेरी वाइफ से मिलिए, ये हैं अरुणिमा रायचंद। उन तीनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आस्तिक ने अरुणिमा को उनसे मिलवाते हुए कहा, और ये मिस्टर सुजीत राय हमारे बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर हैं और फैमिली रिलेशन भी हमसे काफ़ी अच्छे हैं। ये है मिस्टर सुजीत राय, इनकी पत्नी निर्मला राय और ये इनका बेटा नकुल राय। अरुणिमा ने तीनों को देखते हुए मुस्कुराया और मिस्टर व मिसेज राय की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते। निर्मला जी अपनी जगह से खड़ी हुई और अरुणिमा के पास आईं, वो उसे गले लगा लिया। क्योंकि हाई सोसाइटी में ये थोड़ा नॉर्मल था तो अरुणिमा ने भी मुस्कुराते हुए उन्हें गले लगा लिया। निर्मला जी मुस्कुराते हुए बोली, तुमसे मिलकर खुशी हुई अरुणिमा, अब तक तुम्हें सिर्फ अखबारों में ही देखा था, तुम्हारे बारे में सिर्फ सुना ही था, लेकिन आज पहली बार तुम्हें सामने देखकर कह सकती हूँ कि जितना देखा और सुना था वो बहुत कम था, तुम अपनी तस्वीरों से भी ज़्यादा सुंदर हो। निर्मला जी की बात पर सब हंसने लगे। अरुणिमा भी मुस्कुराकर बोली, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिसेज राय। मिस्टर रायचंद, मुझे लगता है कि आपकी वाइफ को मुझसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये आवाज़ पीछे से आई थी। सबने पलट कर देखा, ये नकुल था, मिस्टर राय का बेटा। वैसे तो उसकी शक्ल अपने पिता से मिलती थी लेकिन उसकी पर्सनालिटी में काफ़ी अंतर था। आस्तिक ने नकुल को देखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। अरुणिमा ने नकुल की तरफ देखा और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते। नकुल जो अब तक अरुणिमा को घूर रहा था उसने एक नज़र अरुणिमा के जुड़े हुए हाथों को देखा और फिर एक व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ अपनी जगह से उठकर निर्मला जी के सामने आ गया। उसने कहा, ये सब तो बड़े बुजुर्गों से मिलने का तरीका होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम उम्र के साथ थोड़ा कंफर्टेबल होकर मिलना चाहिए। हेलो अरुणिमा जी। नकुल ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और अरुणिमा से हाथ मिलाने की कोशिश करने लगा। अरुणिमा एक पल के लिए ठिठक गई, वो हैरान थी और हल्की नज़रों से आस्तिक को देखने लगी। आस्तिक का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, ना तो वो कुछ कह रहा था और ना ही अरुणिमा को कुछ करने के लिए बोल रहा था, लेकिन उसकी नज़र नकुल के हाथ पर थी जो उसने अरुणिमा की ओर बढ़ा रहा था। अरुणिमा अभी भी आस्तिक के इशारे का इंतजार कर रही थी, तभी आस्तिक ने एक व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ नकुल को देखते हुए कहा,
बिल्कुल नकुल, सही कहा तुमने, हम उम्र के लोगों को एक दूसरे के साथ कम्फर्टेबल होकर ही मिलना चाहिए। पर वो क्या है ना, शरीफ घरों की औरतें अक्सर ऐसा नहीं करती, उनके मिलने जुलने के अपने शिष्टाचार होते हैं। ऐसे हाथ मिलाना, कमर में हाथ डालना, गले मिलना या फिर गालों पर किस करना, ये सब हाई सोसाइटी के रूल्स होते हैं और ऐसा लोग अक्सर अपने दोस्तों के साथ ही करते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है, तुम मेरी बीवी से पहली बार मिल रहे हो, तुम्हें लगता है कि ऐसे में वो तुम्हारी दोस्त बन गई है जो तुमसे हाथ मिलाएगी? नकुल, जो अब तक अरुणिमा की तरफ ही देख रहा था, उसने धीरे से अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और वापस अपने करीब करते हुए अपनी जेब में डाल ली। उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं बदले ताकि ये जाहिर ना हो कि आस्तिक की बातों का उस पर कितना असर पड़ा है। लेकिन निर्मला जी ने नकुल को घूरते हुए कहा, क्या बदतमीजी है नकुल, हम यहाँ मिस्टर रायचंद और उनकी फैमिली से मिलने आए हैं और तुम आते ही इस तरह का मजाक कर रहे हो। अरुणिमा ने कुछ गलत नहीं किया था, मेहमान होने के नाते अगर वो हमें नमस्ते कह रही है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसका जवाब दो, और अगर नहीं देना है तो चुपचाप जाकर अपने पापा के पास बैठो। उसके बाद निर्मला जी ने अरुणिमा से कहा, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ अरुणिमा, दरअसल इसने फ़ौरन से पढ़ाई की है और तुम तो जानती हो वहाँ इंडियन संस्कारों की कद्र नहीं होती, वहाँ कोई इन्हें निभाने की कोशिश भी नहीं करता। अरुणिमा ने हल्के से मुस्कुराते हुए निर्मला जी को देखकर कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। नकुल वापस जाकर अपने पिता के पास बैठ गया, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी अरुणिमा पर ही थीं। जब अरुणिमा और आस्तिक सोफे पर आकर बैठ गए और उनके ठीक सामने नकुल की फ़ैमिली थी, तो नकुल ने अरुणिमा को देखते हुए आस्तिक से कहा, आई एम सॉरी श्री रायचंद, दरअसल मैंने दोस्ती करने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी। वो क्या है ना, अमेरिका में भी मैं लोगों को देखकर ही दोस्ती किया करता था, तो मुझे लगा कि अरुणिमा जी को मुझसे दोस्ती करने में इंटरेस्ट होगा। आस्तिक की मुट्ठियाँ कस गई थीं और उसकी निगाहें तीखी हो गईं। उसने गुस्से में कहा, मतलब मिस्टर रायचंद, अभी पिछले हफ्ते ही मैंने आपकी वाइफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा था जिसमें वो किसी आदमी के साथ थीं। वो वीडियो इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हो गया था, हालांकि कुछ समय बाद वो डिलीट भी हो गया, लेकिन मुझे पता है कि उसे डिलीट करवाने में मिस्टर रायचंद का ही हाथ होगा, मगर जब तक वो वीडियो सोशल मीडिया पर था उसने काफ़ी धूम मचा दी थी। अचानक अरुणिमा के चेहरे की चमक गायब हो गई और वो हैरानी से नकुल को देखने लगी। वहीं आस्तिक की तीखी निगाहें भी नकुल पर टिक गईं। मिस्टर और मिसेज राय को समझ आ गया था कि उनका बेटा बहकते बहकते कुछ ज़्यादा ही बोल गया है। मुंबई, खंडेलवाल इंडस्ट्री। विक्रम अपनी केबिन में बैठा हुआ था, उसके हाथों में एक फ़ाइल थी जिसमें वो अपने आने वाले प्रोजेक्ट की डिटेल्स देख रहा था। दरअसल ये प्रोजेक्ट रायचंद इंडस्ट्री के साथ था जिसका हेड आस्तिक था, लेकिन विक्रम को पता था कि आस्तिक इस समय अनुपमा के साथ बेंगलुरु गया हुआ है। समस्या ये थी कि इस प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर्स एक मीटिंग करना चाहते थे और आस्तिक फ़िलहाल यहाँ मौजूद नहीं था। विक्रम को पता था कि आस्तिक अरुणिमा के पेरेंट्स से मिलने गया हुआ है, ऐसे में उसे डिस्टर्ब करना विक्रम को सही नहीं लग रहा था, लेकिन ये मीटिंग भी तो ज़रूरी थी। विक्रम ने नीरज को फ़ोन किया जो आस्तिक का असिस्टेंट था, उसे बेहतर पता होगा कि इस वक्त इस प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल किया जा सकता है। नीरज ने विक्रम की बात सुनी और कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है सर, आप मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं आपको शाम तक बताता हूँ कि सर की गैर मौजूदगी में ये प्रोजेक्ट कौन संभालेगा। विक्रम ओके कहकर फोन रख देता है और नीरज प्रोजेक्ट के बारे में मैनेजर और कंपनी के बाकी इंपॉर्टेंट लोगों से बात करने की सोचता है। पर जैसे ही वो मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ता है, उसे सामने से आभा नजर आती है। आभा अभी अभी मैनेजर के केबिन से निकली थी। नीरज ने उसे देखते हुए कहा, आभा मैम, मैनेजर सर अंदर हैं क्या? आभा ने हामी में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैनेजर सर अपने केबिन में ही है, मैं अभी अभी उनसे मिलकर आई हूँ। कुछ काम था क्या? क्योंकि वो अभी लंच ब्रेक पर जाने वाले हैं, अगर कुछ जरूरी है तो आप मुझे बता दीजिए, लंच ब्रेक के बाद मेरी मैनेजर सर के साथ एक मीटिंग है। नीरज ने प्रोजेक्ट फाइल आभा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये खंडेलवाल इंडस्ट्री के साथ हमारी कंपनी की नई प्रोजेक्ट फाइल है, लेकिन इस समय सर मुंबई में नहीं है, तो ऐसे में इस प्रोजेक्ट को आगे कौन हैंडल करेगा, इसी बारे में मैनेजर से बात करनी थी। आभा ने नीरज के हाथों से फाइल लेते हुए कहा, ठीक है, आप मुझे ये फाइल दे दीजिए, जब मैं मीटिंग के लिए जाऊंगी तब मैनेजर सर को ये फाइल दे दूंगी और आपकी बात भी उन्हें बता दूंगी। आभा ये कहकर वहां से जाने ही वाली थी कि अचानक रुक गई और नीरज से बोली, वैसे नीरज, आपको पता है कि भाई वापस कब तक आएंगी? नीरज ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि आस्तिक वापस कब तक आएगा, यहाँ तक कि सर ने साफ मना कर दिया है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक उन्हें फोन ना किया जाए।